नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। चालू वित्त वर्ष में मजबूत घरेलू मांग के कारण देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी भारत, आकांक्षी युवा और आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने निर्माताओं से नए खुले बाजारों में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों को ले जाने के अवसर का लाभ उठाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए समानता संबंधी नियमों पर रोक लगाई। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। विभिन्न दलों के नेताओं ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट का आज शाम नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजन और वडोदरा में महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का मुकाबला यूपी वॉरियर्स से। अब समाचार विस्तार से। देश में वित्त वर्ष 2025-26 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2026-27 में वृद्धि दर 6.8 से 7.2% के बीच रह सकती है। यह अनुमान आज संसद में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश आर्थिक सर्वेक्षण में व्यक्त किया गया।
I rise to lay on the table a copy each of the following papers: Economic Survey 25-26, Economic Survey 25-26 Statistical Appendix.
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्त वर्ष 2025-26 में वृद्धि की मजबूत गति को बनाए रखा है। पहले अग्रिम अनुमानों के अनुसार वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान है, जिसमें घरेलू मांग का महत्वपूर्ण योगदान है। निजी उपभोग और पूंजी निर्माण से वृद्धि को समर्थन मिल रहा है, जबकि आपूर्ति पक्ष में सेवाओं का योगदान प्रमुख बना हुआ है। विनिर्माण गतिविधि मजबूत हुई है और कृषि क्षेत्र ने स्थिरता प्रदान की है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भू राजनीतिक तनाव और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार व्यवधानों के कारण वैश्विक आर्थिक माहौल अनिश्चित बना हुआ है। हालांकि निकट भविष्य में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों में प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी स्थिरता दिखी है, लेकिन अंतर्निहित कमजोरियां बनी हुई हैं, जिनमें उच्च राजकोषीय दबाव, खंडित आपूर्ति श्रृंखलाएं और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्थिक नीतिगत साधनों पर बढ़ती निर्भरता शामिल है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देश का हाल का आर्थिक प्रदर्शन दर्शाता है कि वैश्विक उथल पुथल के बावजूद व्यापक आर्थिक स्थिरता और वृद्धि को बनाए रखा जा सकता है। अनुकूल मॉनसून परिस्थितियों के सहयोग से वित्त वर्ष 2025-26 में कृषि और संबद्ध गतिविधियों की वृद्धि 3.1% रहने का अनुमान है। औद्योगिक गतिविधियों में गति मजबूत बनी रहने की संभावना है, जिसे जीएसटी के युक्तिसंगत होने और मांग के अनुकूल स्थितियां बनने से बल मिलेगा। सर्वेक्षण में कहा गया है कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित कुल महंगाई दर घटकर 1.7% रह गई है, जिसका मुख्य कारण सब्जियों और दालों की कीमतों में सुधार रहा है। सर्वेक्षण के अनुसार मुद्रास्फीति की स्थिति अनुकूल बने रहने का अनुमान है। आनंद और भूपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
वित्त मंत्री द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की अगली कार्यवाही अब 1 फरवरी रविवार को होगी। इस दिन केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा। दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक आयोजित होगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता आत्मविश्वासपूर्ण प्रतिस्पर्धी और उत्पादक भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट सत्र के दूसरे दिन आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
इस क्वार्टर के प्रारंभ में ही भारत और यूरोपियन यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आने वाली दिशाएं कितनी उज्ज्वल है, उसकी एक झलक है। ये फ्री ट्रेड फॉर एम्बिशियस भारत है, ये फ्री ट्रेड फॉर एस्पिरेशनल यूथ है, ये फ्री ट्रेड फॉर आत्मनिर्भर भारत है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से एक नया बाजार खुल गया है और देश के निर्माताओं को इसका लाभ उठाना चाहिए।
जब बाजार खुल गया है तो उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के बाजार में जाए, और अगर उत्तम से उत्तम क्वालिटी लेकर के जाते हैं तो हम यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के खरीदारों के दिल जीत लेते हैं। दशकों तक उसका प्रभाव रहता है। कंपनियों का ब्रांड देश के ब्रांड के साथ नए गौरव को प्रस्थापित कर देता है।
श्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए अगले 25 वर्ष महत्वपूर्ण होंगे। श्री मोदी ने कहा कि कल संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का संबोधन देश के 140 करोड़ लोगों के विश्वास की अभिव्यक्ति थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का लोकतंत्र और जनसंख्या विश्व के लिए आशा के किरण है और अब देश आकर्षण का केंद्र बन गया है।
भारत की डेमोक्रेसी और भारत की डेमोग्राफी आज दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है। तब इस लोकतंत्र के मंदिर में हम विश्व समुदाय को भी कोई संदेश दें, हमारे सामर्थ्य का, हमारे लोकतंत्र के प्रति समर्पण का, लोकतंत्र की प्रक्रिया के द्वारा हुए निर्णयों का सम्मान करने का ये अवसर है, और विश्व इसको जरूर स्वागत भी करता है, स्वीकार भी करता है।
भारतीय जनता पार्टी के सांसद और अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस समझौते के माध्यम से देश के लघु उद्योगों और कई ऐसे उत्पादों को जिन्हें अब तक यूरोपीय संघ का बाजार नहीं मिल पा रहा था, अब वो मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आगामी बजट आम आदमी की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश अमेरिका के उच्च शुल्क से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह समझौता भारत के निर्यातकों, उद्योग और लघु तथा मध्यम उद्योगों को वैकल्पिक बाजार और पहुंच प्रदान करता है। आज पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित जीडीपी वृद्धि पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से भारत की जीडीपी बढ़ रही है वो जल्द ही विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केरल के वित्त मंत्री केएन बालागोपाल ने घोषणा की है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए मौजूदा एनपीएस के स्थान पर सुनिश्चित पेंशन योजना लागू की जाएगी। हालांकि जो कर्मचारी एनपीएस के तहत बने रहना चाहते हैं उन्हें विकल्प दिया जाएगा। ये घोषणा अगले वित्त वर्ष का राज्य बजट पेश करते हुए की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता संवर्धन नियम 2026 को स्थगित करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने नियमों पर कुछ आपत्तियां व्यक्त की जिन्हें सामान्य वर्ग के प्रति भेदभावपूर्ण बताया गया। न्यायालय ने सुझाव दिया कि प्रतिष्ठित न्यायविदों की एक समिति द्वारा नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल बागजी की पीठ 2026 के विनियमों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली तीन रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने आदेश दिया कि इस बीच 2012 के यूजीसी नियम लागू रहेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी एक मौलिक अधिकार है और इसका उपयोग व्यक्तियों या संगठनों के खिलाफ अपमानजनक अभियानों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता है। एक रिपोर्ट।
न्यायालय ने कहा कि संविधान स्वयं अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत उचित प्रतिबंध लगाता है और अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार मानहानि, दुर्भावनापूर्ण या दूसरों की प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता। न्यायालय ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रहा था जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक पूर्व कर्मचारी ने यूट्यूब वीडियो और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से कंपनी, उसके संस्थापक और कर्मचारियों को गलत बताकर एक निरंतर ऑनलाइन अभियान चलाया। न्यायालय ने माना कि वीडियो में इस्तेमाल की गई सामग्री का उद्देश्य कंपनी द्वारा वर्षों से अर्जित प्रतिष्ठा और सद्भावना को धूमिल करना था। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के प्रमुख अजित पवार का अंतिम संस्कार आज पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अंतिम संस्कार में शामिल हुए।
पूरे महाराष्ट्र में दादा के नाम से जाने जाने वाले अजित पवार को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए हजारों लोग एकत्र हुए थे। कल एक विमान दुर्घटना में अजित पवार के साथ अन्य चार लोगों की मृत्यु हो गई। अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को बारामती से काटेवाड़ी गांव स्थित उनके निवास पर लाया गया, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे और उनके परिवार सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने अजित पवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को बारामती के विद्या प्रतिष्ठान मैदान ले जाया गया और तिरंगा उनके पुत्र जय पवार को सौंपा गया। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सहित अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने अजित पवार के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पण कर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। उन्हें 3 राउंड की सलामी दी गई। हजारों लोगों ने नम आंखों से अजित पवार को अंतिम विदाई दी। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
दुर्घटनाग्रस्त विमान का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। नागर विमानन मंत्रालय ने बताया है कि विमान दुर्घटना के तुरंत बाद सभी आवश्यक प्रतिक्रिया और जांच तंत्र सक्रिय कर दिए गए थे। मंत्रालय ने कहा कि आगे की जांच तेजी से चल रही है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सदन को राष्ट्रमंडल अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन CSPOC 2026 के सफल आयोजन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 14 से 16 जनवरी तक आयोजित 28वां CSPOC सम्मेलन एक बड़ी सफलता साबित हुआ। श्री बिरला ने कहा कि यह सम्मेलन 16 वर्ष के अंतराल के बाद भारत में आयोजित किया गया।
ये सम्मेलन 53 राष्ट्रमंडल देशों और 14 अर्ध स्वायत्त संसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों को एक मंच पर लाता है। मुझे आपको सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है, इस सम्मेलन में रिकॉर्ड अभी तक CSPO सम्मेलन में हुए देश में सबसे ज्यादा 60 से अधिक पीठासीन अधिकारी और 200 डेलीगेट्स ने इसमें हिस्सा लिया।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण सुनवाई प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए राज्य को प्रतिदिन 7 से 8 लाख मतदाताओं की सुनवाई करने का निर्देश दिया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय से जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ साथ सुनवाई में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के महापौर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की। भाजपा के सौरभ जोशी ने चंडीगढ़ के महापौर पद का चुनाव जीता। गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग रिट्रीट आज नई दिल्ली के विजय चौक पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीटिंग रिट्रीट समारोह गणतंत्र दिवस समारोह के समापन का प्रतीक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि बीटिंग रिट्रीट समारोह अनुशासित और गरिमापूर्ण परम्परा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत 31 जनवरी को भारत अरब विदेश मंत्रियों के दूसरे सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसकी अध्यक्षता भारत और संयुक्त अरब अमीरात करेंगे। अरब लीग के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्री और अरब लीग के महासचिव भी इसमें भाग लेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए उस पर मूलभूत अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है और अगले महीने राष्ट्रीय चुनाव से पहले सुधारात्मक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस को लिखे खुले पत्र में एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलामार्ड ने कहा है कि अंतरिम प्रशासन जनविश्वास हासिल करने में असफल रहा है। महिला प्रीमियर लीग WPL क्रिकेट में आज शाम गुजरात के कोटंबे स्थित वडोदरा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में यूपी वॉरियर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। चालू वित्त वर्ष में मजबूत घरेलू मांग के कारण देश की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.4% रहने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महत्वाकांक्षी भारत, आकांक्षी युवा और आत्मनिर्भर भारत के लिए भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के महत्व पर प्रकाश डाला। श्री मोदी ने निर्माताओं से नए खुले बाजारों में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों को ले जाने के अवसर का लाभ उठाने को कहा। सर्वोच्च न्यायालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए समानता संबंधी नियमों पर रोक लगाई। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का अंतिम संस्कार बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया और 77वें गणतंत्र दिवस समारोह का समापन आज शाम नई दिल्ली में विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट के साथ होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।